रात गहरा चुकी थी। हवेली के लंबे चौड़े गलियारों में सन्नाटा उतर आया था। बस दीवारों पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक और कहीं दूर से आती हवा की सरसराहट उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। अदिति ने ट्रे में दूध का ग्लास रखा, हल्का सा केसर ऊपर तैर रहा था। वो धीरे धीरे सुषमा देवी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्के से दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से भारी थोड़ी कड़क आवाज आई। अदिति ने दरवाजा खोला। कमरा वैसा ही था, ऊंची छत, भारी पर्दे, लकड़ी की अलमारी और बीच में चौड़ा पलंग। दीवार पर सुषमा देवी के पति की तस्वीर टंगी थी। सुषमा देवी तकिए से टेक लगाए बैठी थी, चश्मा नाक पर, हाथ में माला। उन्होंने जैसे ही अदिति को देखा, भौहें हल्की सिकुड़ो। तुम? अदिति ने मुस्कुराकर ट्रे आगे बढ़ाई। दूध? श्यामली कहाँ है? स्वर में हल्की सी रुखाई थी। वो नहीं आई? अदिति ने जरा भी ठहराव नहीं आने दिया। वो नीचे किसी काम में बिजी थी दादी, उसने मीठे स्वर में कहा। और फिर मैं भी तो इस घर की बहू हूं, मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं। सुषमा देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अदिति ने ग्लास साइड टेबल पर रखा और पास बैठ गई। वैसे, उसने कमरे में नजर घुमाते हुए कहा, आज आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, ये बनारसी है क्या? सुषमा देवी का चेहरा हल्का सा नरम पड़ा। हाँ, पुरानी है, मेरे मायके से आई थी। बहुत शान है इसमें, अदिति ने साड़ी के पल्लू को हल्के से छूते हुए कहा। आप पर तो और भी जच रही है। सुषमा देवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जिसे उन्होंने तुरंत दबा लिया। बातें बनाना अच्छी तरह आता है तुम्हें, उन्होंने कहा। सीख रही हूं, अदिति ने झट जवाब दिया। कुछ पल चुप्पी रही, फिर अदिति ने जैसे अनायास सा पूछा, वैसे दादी, आप श्यामली से हमेशा थोड़ी सख्ती से बात करती हैं, आपको वो पसंद नहीं? कमरे की हवा जैसे ठहर गई। सुषमा देवी की उंगलियां माला के दानों पर रुक गईं। उन्होंने कुछ सेकंड तक अदिति को देखा। तुम्हें क्यों जानना है? अदिति ने हल्की सी हंसी में बात को हल्का करने की कोशिश की। बस ऐसे ही, घर में रहती हूं तो महसूस होता है। सुषमा देवी ने लंबी सांस ली। हाँ, उन्होंने धीमे पर साफ स्वर में कहा, मुझे वो पसंद नहीं। अदिति का दिल एक पल को जोर से धड़का। क्यों? सुषमा देवी की नजर दीवार पर टंगी तस्वीर पर चली गई। मेरे पति, उनकी आवाज भारी हो गई, 2 साल पहले उसकी जान बचाते हुए मरे थे। अदिति जैसे जड़ हो गई। क्या? हाँ, उन्होंने बिना भाव बदले कहा। रास्ते पर जा रही थी वो, तुम्हारे दादा ने उसे धक्का देकर बचाया, खुद गिर पड़े, सिर पर गहरी चोट आई। अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते कमरे में सन्नाटा फैल गया। घड़ी की टिक टिक अब और साफ सुनाई दे रही थी। ये बात घर में कोई नहीं जानता, सुषमा देवी ने धीमे स्वर में कहा। सबको बताया गया कि उनका पैर फिसल गया था, लेकिन सच्चाई सिर्फ मैं जानती हूं। अदिति की उंगलियां अनजाने में आपस में कस गईं। मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूं, सुषमा देवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगता है तुम भी शायद उसे पसंद नहीं करती। अदिति का दिल एक पल को अटक गया। चेहरे पर उसने कोई भाव नहीं आने दिया। मन में विचारों की आंधी उठी। अगर मैंने अपनी असली वजह बता दी कि मुझे उससे जलन है, कि मुझे डर है कहीं आर्यन, नहीं, वो आर्यन को नाराज नहीं कर सकती, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। नापसंद? ऐसा कुछ नहीं दादी, बस। बस क्या? बस मुझे लगता है वो मुझे अपना कंपटीशन मानती है, सुषमा देवी की आंखों में हल्की चमक आई। कंपटीशन? हाँ, अदिति ने सिर झुकाकर कहा। घर की जिम्मेदारियां, आपका ध्यान, सबका भरोसा, शायद उसे लगता हो कि मैं उसकी जगह ले लूंगी। सुषमा देवी कुछ पलों से देखती रहीं, फिर उनके होठों पर धीमी मुस्कान आई। तुम समझदार हो, उन्होंने कहा। अदिति ने भी मुस्कुरा दिया, लेकिन दोनों की मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। दोनों के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। सुषमा देवी सोच रही थी, अगर ये लड़की मेरे साथ है तो शायद मैं अकेली नहीं हूं। और अदिति, वो सोच रही थी, तो ये है वजह, दादा की मौत श्यामली की वजह से। अब खेल थोड़ा साफ हो गया है, दूर ठंडा हो जाएगा, अदिति ने सामान्य स्वर में कहा। सुषमा देवी ने ग्लास उठाया, एक घोंट लिया। अदिति, उन्होंने धीमे से कहा, इस घर में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, अदिति ने उनकी आंखों में देखा। मैं समझती हूं दादी। कमरे में फिर कुछ पल सन्नाटा रहा। बाहर हवा तेज चलने लगी थी, पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। अदिति उठी। अच्छा अब आप आराम कीजिए। वो दरवाजे की ओर बढ़ी। हाथ हैंडल पर रखते ही उसने एक पल को पीछे देखा। सुषमा देवी की नजर फिर से अपने पति की तस्वीर पर टिक गई थी। अदिति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। एक चाल चल चुकी थी और अब अगली बारी। दरवाजा बंद होते ही गलियारे में फिर वही सन्नाटा। नीचे कहीं दूर रसोई की आखिरी लाइट बुझी। हवेली सो रही थी, लेकिन तीन औरतों के मन में हलचल जाग चुकी थी। रात सच में शांत थी, पर आने वाले दिनों का तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। रसोई में अब भी हल्की रोशनी चल रही थी। बाकी नौकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सिर्फ कोने वाली दीवार पर लगी पीली लाइट के नीचे शामली खड़ी थी। चूल्हे पर छोटा सा पतीला चढ़ा था। दूध धीरे धीरे उबलने की कगार पर था। उसने उसमें एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा केसर डाला, जैसा सुषमा देवी को पसंद था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों के नीचे की थकान अब और गहरी लग रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। रहने दो, एक आवाज आई। शामली ने पलट कर देखा। अदिति दरवाजे के पास खड़ी थी। चेहरा सामान्य, पर आंखों में कुछ नया था। मैं दे आई दादी को दूध, उसने सहज लहजे में कहा। एक पल को शामली का हाथ रुक गया। ओ, उसने धीरे से कहा, मैं अभी ले जाने ही वाली थी। दोनों की नजरें मिली। सिर्फ दो सेकंड, लेकिन उन दो सेकंड में जैसे बहुत कुछ कहा सुना गया। अदिति की आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे उसने कोई जानकारी हासिल कर ली हो। शामली ने उस चमक को नोटिस किया। दिल में हल्की सी हलचल हुई। कुछ बदला है, अभी अभी, पर उसने कुछ पूछा नहीं। चेहरा बिल्कुल सामान्य रखते हुए उसने गैस बंद की। अच्छा किया, उसने धीमे स्वर में कहा। वैसे भी देर हो रही थी। अदिति कुछ कदम अंदर आई। रसोई अब लगभग खाली थी। पीतल के बर्तनों पर लाइट की परछाइयां पड़ रही थी। तुमने हल्दी डाली थी, अदिति ने पतीले की ओर देखते हुए पूछा। हां, शामली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उन्हें हल्दी वाला दूध पसंद है, मुझे पता है, अदिति ने तुरंत जवाब दिया। फिर हल्की चुप्पी। शामली ने गौर किया। आज अदिति की आवाज में वही खटास नहीं थी, कुछ और था, जैसे कोई सोच भीतर चल रही हो। और कुछ चाहिए, शामली ने सहजता से पूछा। अदिति ने सिर हिलाया। नहीं, बस बताने आई थी। दोनों फिर एक पल को आमने सामने खड़ी रहीं। शामली को महसूस हुआ अदिति की नजर आज सीधी उसकी आंखों में ठहर रही है, जैसे वो टटोल रही हो, जैसे कोई जवाब तलाश रही हो। दिल ने हल्का सा इशारा किया।